आदरणीय राजू भाई जी का हम सब बहुत बहुत करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। आप सभी आदरणीय राजू भाई को पहचानते होंगे, पहचानते हैं सभी, जरा हाथ खड़ा करें। हाँ, सब पहचानते, क्योंकि मुरली को सब पहचानते है ना, इसलिए वरदान स्लोगन सार प्रश्नोत्तर जो मक्खन निकालकर हमारे पास भेजते हैं ना आदरणीय राजू भाई जी। तो आज आपके क्लास का विषय ही है भोलानाथ को राजी करने की युक्तियां, जो रोज हम बच्चों को मधुबन से मुरली से मिलती ही है। आपका परिचय होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुरली से तो हम सब परिचित हैं। आपका लौकिक जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक छोटे गांव में हुआ। माता पिता को अध्यात्म में विशेष रुचि थी और सन 1960 से ईश्वरी विश्वविद्यालय की गतिविधियां गीता पाठशाला आपके लौकिक घर से शुरू हुई। आप लौकिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई भी पढ़ते रहे और 1971 में आप प्रथम बार ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू में आए। उसी समय आपके मन में समर्पित रूप से ईश्वरी सेवा करने की इच्छा जागृत हुई और माता पिता की स्वीकृति लेकर आप 1972 में विद्यालय की सेवाओं में समर्पित हो गए। वर्तमान समय देश विदेश में जो ईश्वरी महावाक्य जिसे हम मुरली कहते हैं, जो आध्यात्मिक पढ़ाई के लेसन हेडक्वार्टर से भेजे जाते हैं, उसमें आपका विशेष योगदान है। आप उन्हें कंपोज करते हैं तथा ईश्वरी विद्यार्थियों के पुरुषार्थ को सरल बनाने के लिए विशेष प्रारूप में वरदान और स्लोगन के रूप में धारणा के रूप में विशेष पॉइंट को हाईलाइट करके हम सबके पास भेजते हैं। मुख्यालय में जो प्रतिमा सोन्नति हेतु पत्र पुष्प निकलता है, जिसमें विशेष परमात्मा प्रेरणाएं, दादी जी की प्रेरणाएं और समाचार होते हैं, वो आप ही हमारे पास भेजते हैं। आपको प्यारे बाबा के द्वारा अव्यक्त रूप से दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। आपने ईश्वरी महावाक्यों से हर वर्ग की आत्माओं की बहुत अति सेवा की है। इन सब सेवाओं के साथ साथ मुख्यालय में दादी जी के पास जो पत्र आते हैं, उन पत्रों का उत्तर देने का कार्य भी आप देखते हैं। हिंदी टाइपिंग के साथ साथ फोटोकॉपी डिपार्टमेंट तथा विशेष स्टेशनरी आदि भी आप संभालते हैं। सतत अध्ययन के कारण आपकी बुद्धि में ईश्वरीय खजाना भरा हुआ है और योग की अनुभूति कराने के लिए देश विदेश के अनेक स्थानों पर आप जाते हैं। वर्तमान समय आप ग्राम विकास प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपके लिए मैं कुछ शब्द कहूंगी। मुरली का करते आप अनोखा श्रृंगार, भगवान का जो वरदान मिला है, साथ में लिया ग्राम विकास का प्रभार, यौगिक खेती का भी आपको ज्ञान मिला है, आप योग के प्रयोग से पौधों में जान भरते हो और अपने चेहरे और चलन से बाबा का नाम रोशन करते हो। बाबा का नाम रोशन, आदरणीय राजू भाई।
भोलानाथ बाबा के जन्मदिन पर आप सभी बाबा के घर में पधारे हैं, इसलिए आज की क्लास का विषय रखा है भोलानाथ को राजी करने की युक्तियां क्या है। हम सब पर राजी तो हुआ है ना, जब वो राजी हुआ है तभी अपना बनाया है और अपने घर में बुला लिया है, लेकिन किस पर राजी हुआ? जो भूले हैं, भूलों का नाथ। बाबा के दो नाम बहुत प्रसिद्ध हैं, बार बार मुरली में आते हैं। एक बाबा कहता है मैं हूँ गरीब निवाज और दूसरा हूँ भोलानाथ। तो भोलानाथ बाबा जो हम भोले बच्चों का बाबा है, उस बाबा ने हम सबको अपना बनाया, चुना, ढूंढा जरूर हमारे कोई भोलेपन को देख करके। भोले माना बुद्धू नहीं, लेकिन बहुत सरल नेचर, बहुत सहज, और गरीब माना भिखारी नहीं, लेकिन शरीर का भी मैंपन भान नहीं। तो ऐसे गरीब और भोलो बच्चों को बाबा अपना बना करके क्या से क्या बना देता है। हम तो अपनी लाइफ हिस्ट्री को देखते हैं कि बाबा ने क्या से क्या अभी संगम पर बनाया है, कहाँ से चुना, कैसे निकाला, और कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ानी पढ़नी और पढ़ानी उसकी सेवा दी। तो भोलानाथ कैसे राजी हुआ, सभी अनुभव करते होंगे कि हम सब पर वो राजी है, प्रसन्न है। और क्यों हुआ है? क्योंकि हम सब की सच्चाई पर वो फिदा है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। सबसे ज्यादा बाबा को बच्चों की सच्चाई अच्छी लगती है, जो हैं जैसे हैं बाबा आपके हैं। अगर कोई की कथनी और करनी में अंतर होता है, अंदर एक बाहर दूसरा रूप होता है, दिखाता कुछ है करता कुछ है, बाबा को पसंद नहीं आता, उस पर बाबा राजी नहीं हो सकता। इसलिए भोलानाथ बाबा को राजी करने के लिए, क्योंकि वो भोलानाथ माना खुद भोला नहीं है, भोलों का नाथ है। कई बार हम समझ लेते वही भोला है, और उसके कारण भक्ति के अंदर उसको इतना भोला रूप दिया है। सुनी होंगी कहानियां आप लोगों ने भक्ति मार्ग में, कहते हैं एक शिकारी बेल पत्र के झाड़ के ऊपर बैठ गया, शिकार करने के लिए आया था, थका मांदा था। जब झाड़ पर बैठ गया तो उस पर उसको नींद नहीं आ रही थी, रात का समय हो गया, तो वो पत्ते तोड़ तोड़ करके नीचे डालने लगा, और नीचे शिवलिंग की पिंडी थी। तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए कि कितना जागरण करके भक्त ऊपर से पत्ते डाल रहा है, बेल पत्र चढ़ा रहा है, इतना भोला दिखाया है भक्ति के अंदर। दूसरा दिखाते हैं, जब गज को ग्राह ने खाया, कहते हैं बाबा कहानी सुनाते हैं मुरली के अंदर, गज और ग्राह की। ग्राह माना मगरमच्छ, और गज हाथी को कहते हैं। तो हाथी जब पानी पीने के लिए तालाब में उतरा, तो उसके पैर को मगर ने पकड़ लिया और उसको खींचने लगा अपनी तरफ। तो हाथी पानी पी करके अपनी सूंड ऊपर उठा करके और पानी फेंकने लगा और चिल्लाने लगा। तो भोलानाथ प्रसन्न हो गए कि भगवान को ये पुकार रहा है, याद कर रहा है, और दौड़ करके उसकी रक्षा करने के लिए आए और उस मगर से उसको मुक्त कर दिया। ऐसा भोलानाथ बाबा को दिखाया है, कोई ने अगर उसको भूले चुके भी याद कर लिया, जान न पहचान फिर भी याद कर लिया, तो उसके ऊपर भी प्रसन्न हो जाता है। हम सब बाबा के बच्चे तो यथार्थ रूप से बाबा को पहचान करके, उनके साथ सब संबंध स्थापित करके याद भी करते हैं, और उनके साथ अटूट प्यार भी है। एक शब्द है जिसमें कहते हैं कि बाबा के साथ हम सब का अटूट प्यार है, स्नेह है, लेकिन जब सब संबंधों से एक से स्नेह है, तो क्या उसकी याद निरंतर बनी रहती है? अगर मेरा तो एक दूसरा न कोई, ऐसे हम सब एक वृत्ता हैं, तो एक की याद दिल में बसी रहती है या एक के सिवाय और कोई दूसरा याद रहता है। कोई ने मेरे से प्रश्न किया था कि मेरा तो बाबा से बहुत स्नेह है, फिर बाबा क्यों कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा प्यार अब व्यभिचारी होना चाहिए, मेरा तो बाबा के सिवाय है ही कौन। तो मैंने कहा कि स्नेह का अर्थ क्या है, कैसे बाबा से स्नेह करते हो। स्नेह का अर्थ है कुर्बानी। अगर स्नेह के पीछे कुर्बानी नहीं है तो उसको सच्चा स्नेह नहीं कहा जाता। तो बाबा ये देखता है कि बच्चों ने बाबा से कहते तो हैं, कई बार बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों का मेरे से बहुत प्यार है और इस प्यार के सब्जेक्ट में सब बच्चे पास हैं। लेकिन अगर मेरा सच्चा बाबा से प्यार है तो उसके पीछे बलिदान क्या किया है, कुर्बानी क्या की है। लौकिक में भी संबंधों के पीछे कुछ न कुछ त्याग है, कुर्बानी है। ऐसे ही संबंध अटूट नहीं रहते अगर उसके पीछे त्याग नहीं किया जाता। आज माँ का अगर बच्चे से प्यार है तो माँ ने कितना उसके पीछे त्याग किया है, कितना सहन करती है, कितनी उसने अपनी नींद की, अपनी थकावट की, अपने सुख साधनों की बलि दे करके, बलिदान दे करके बच्चों को पाला और संभाला है। तब बाप माँ बाप बच्चों के प्रिय हैं। हम सभी भी अगर बाबा के सच्चे स्नेही बच्चे हैं तो क्या बाबा जो कह रहा है वो हम कर रहे हैं। एक बार बाबा ने बड़ी रमणीक मोली चलाई थी कि बच्चे मैं ये तो कहता ही नहीं हूं कि मेरे पीछे गला काट दो, लेकिन माया का गला जरूर काट दो। जो माया आप लोगों को बार बार तंग कर रही है, परेशान कर रही है, इस माया माना कमजोरी। माया कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, लेकिन मुझ आत्मा की जो कमजोरियां हैं, जो मेरे संस्कार हैं, वही माया है और वही बीच बीच में परेशान करते हैं। इसलिए बाबा से प्यार माना उन कमजोरियों की कुर्बानी कर देना, उनको त्याग करने के लिए दृढ़ता सा संकल्प कर लेना। तो कल शिवरात्रि का महोत्सव हम सब बाबा के साथ मनाएंगे। वैसे भी भक्तों ने जब ये त्योहार बनाया है तो उसके पीछे भी कई रहस्य हैं। और जब बाबा के बच्चे भी बाबा का ध्वज फहराते हैं, झंडा लहराते हैं, तो कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं, संकल्प लेते हैं। तो बाबा को राजी करने के लिए माना बाबा के पसंद, दिल पसंद स्थिति। जैसा बाबा चाहता है ऐसी हम बच्चों की स्थिति बन जाए तो बाबा हमारे पर स्वतः राजी हो जाएगा। कैसा चाहता है बाबा? एक तो शब्दों में आता है कि बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं, मेरे बच्चे अपने चलन और चेहरे से मेरा नाम रोशन करें, मेरे बच्चे मेहनत से मुक्त हो जाएं, कर्म इंद्रिय जीत, माया जीत, जगत जीत बन करके दिखाएं। तो बाबा की जो आशाएं हैं, जो बाबा की दिल पसंद बातें हैं, अगर वो हम सब ने अपने दिल में समाई हैं और उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारी हैं तो बाबा हमारे से सदा राजी है ही। बाबा को राजी करने की बात ही नहीं आती। लेकिन बाबा राजी हुआ है तब तो हम सब की पालना कर रहा है, श्रेष्ठ मत दे रहा है, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है। बाबा के चार स्वरूप हमारे सदा सामने रहते हैं। भोलानाथ भी है, लेकिन भोलानाथ के साथ साथ दाता, विधाता, वरदाता और भाग्य विधाता है। सब कुछ बाबा ने अपने बच्चों को दिया है। मैं समझता हूँ जिन्होंने बाबा को सही रीति से पहचाना है और पहचान करके सिर्फ मेरा बाबा कहा है, सिर्फ मेरा बाबा, इसी एक संबंध से बाबा ने उन सबको मालामाल कर दिया, कोई कमी नहीं, कोई कमी कमजोरी नहीं। उनकी श्रीमत को तो नंबर वार सब पालन करते हैं, लेकिन अगर दिल से सच्चा स्नेही बन करके बाबा को सही रूप से, किसी ने भी मेरे से प्रश्न किया था कि बाबा की यथार्थ याद क्या है, यथार्थ का अर्थ ही है अर्थपूर्ण याद। यथार्थ है माना बाबा जो है जैसा है, उस स्वरूप में बाबा को पहचान करके यदि मैं आत्मा आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के उसको याद करती हूँ, इस देह से डिटैच होकर के मैं एक आत्मा हूँ उस निश्चय में बैठ करके बाबा से संबंध स्थापित करते हैं, तो वो याद यथार्थ याद हो जाती है और उस यथार्थ याद से सर्व प्राप्तियां होने लगती हैं। तो बाबा ने दाता बन करके हम सबको सर्व दिव्य गुणों का, सर्व शक्तियों का, स्थूल सूक्ष्म सब प्राप्तियों का वरदान दे दिया। एक एक बाबा का बच्चा जिसने बाबा को सही मायने में पहचाना है और यथार्थ रूप से याद करता है, सच्चे दिल से भावना से याद करता है, तो बाबा उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हम लोगों के जीवन का एक बहुत वंडरफुल अनुभव है और वो यही अनुभव है कि इस संगम की, इस जीवन के अंदर ये भी भान नहीं है कि कोई मेरे जीवन में अप्राप्ति है, सर्व प्राप्तियां बाबा ने करा दी। वैसे तो हम कहते हैं कि देवताओं के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, लेकिन संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं जिन्होंने भोलानाथ बाबा को पहचाना है और राजी किया है, उनके भी खजाने के अंदर स्थूल और सूक्ष्म में कोई भी अप्राप्ति नहीं। और मैं समझता हूं आप सभी इसका अनुभव करते होंगे, क्योंकि अप्राप्तियां असंतुष्टता की निशानी हैं। अगर ये महसूस होता है कि ये चीज मेरे पास नहीं है, ये मेरी जीवन की प्राप्ति होनी चाहिए, माना हम किसी से भेंट कर रहे हैं और जब किसी से भेंट करते हैं तो संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप में क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, हर एक संगम युग पर जब से बाबा का बच्चा बना है, अगर वो बाबा का आज्ञाकारी, ईमानदार, फरमानवरदार, वफादार बन करके रहता है, बाबा की आज्ञाओं की अवज्ञाएं नहीं करता, तो बाबा उस पर इतना राजी रहता है कि उसकी सब मनोकामनाएं पूरी कर देता है। तो हम सब बाबा की आज्ञाओं को अंडरलाइन करें और दृढ़ता से संकल्प कर लें कि बाबा जो आपने आज्ञा की हैं, जो आपके फरमान मिले हुए हैं, वो मेरे सिर माथे, कुछ भी हो जाए उसके लिए मरना पड़े, मिटना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन आपकी आज्ञाओं पर चल करके ही हम रहेंगे कुछ भी हो। और ऐसी दृढ़ता से संकल्प करते हैं तो बाबा हम सबको चार स्लोगन देता है। चार स्लोगन में सबसे पहला स्लोगन यही है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। ऐसे बाबा से मदद मांगते रहो, बाबा आपको मदद करने के लिए बंधा हुआ नहीं है। कहता है ऐसे तो सारी दुनिया मांग रही है, किसको मदद करूं या न करूं, एक करूंगा तो दूसरा कहेगा इसको क्यों किया, मेरे क्यों नहीं करता। इसलिए कायदा बना दिया कि जिस बच्चे ने हिम्मत रखी, हिम्मत का एक कदम आगे उठाया, तो उसको मदद करने के लिए बाबा हजार कदम आगे आकर उसको साथ देता है, मदद कर देता है। तो ध्यान रखना कि हिम्मत मेरी है तो बाबा की मदद मिलती है, और दूसरा अगर संकल्पों में दृढ़ता है, कमजोरी नहीं है, कमजोर संकल्प सफलता दिला नहीं सकते। अगर हमको किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए दृढ़ता के संकल्प को, लौकिक जीवन में उसको जिद्द कहा जाता है, जिद्द तो बाबा कहता है एक विकार है, उसके पीछे सिद्ध करते हैं लोग, उसके पीछे बहुत टकराव की स्थिति पैदा होती है, लेकिन ये है संकल्पों में दृढ़ता। और संकल्प अगर दृढ़ हो गया कि कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही है, मैं एक संकल्प आपसे कराऊं, करेंगे सभी, बहुत बड़ी सभा है अभी तो 25,000 की लगभग मैं समझता हूँ भाई बहने पहुंच गए हैं, कल भी और आ जाएंगे। क्या आज भगवान के मिलन का अनुभव करने के लिए आप सब ये दृढ़ता से संकल्प ले सकते हो कि हम पूरा ही दिन अव्यक्त और अंतर्मुखी होकर के रहेंगे? ले सकते हो? सही हाथ उठाना। चलो यहाँ जो बैठे हो तो सब हाथ उठा रहे हैं, आधी सभा जो भी क्लास के बाहर है, आधे से भी ज्यादा बाहर हैं। हम बाहर निकलते हैं तो शांति वन का जैसा नाम है वैसा दिखाई नहीं देता, बहुत आवाज हलचल, ऐसे लगता है जैसे कोई मार्केट के अंदर आ गए हों। हम सब भगवान से मिलने के लिए आए हैं, व्यक्त मिलन का अनुभव करने के लिए आए हैं। इस व्यक्त दुनिया, व्यक्त आवाज, व्यक्त से परे रहेंगे तो बाबा कितना खुश हो जाएगा कि मेरे बच्चे मेरे समान स्थिति में हैं, अनुभूति कराएगा कि सचमुच जो बाबा चाहता है कि ये मेरे बच्चे व्यक्त से परे रहें। बहुत समय व्यक्त में हम लोगों ने आवाजों की दुनिया में रहे हैं, अब कुछ समय आवाज की दुनिया से परे चले जाएं, इस देहभान की बातों से परे चले जाएं। तो कल का दिन ऐसा दिन है, आप सब एक दृढ़ता से संकल्प कर लेना, भले कोई कर भी रहा हो, टोकने से आपके कहने से वो रुकेगा नहीं, लेकिन मुझे उस अंतर्मुक्ता की गुफा में रह करके बाबा से ही बातें करनी है, अंदर दिल की बातें। बाबा आवाज नहीं सुनता हमारी, उसको कान नहीं है सुनने के लिए, लेकिन हमारे दिल की बातें उस तक अवश्य पहुंच जाती हैं। तो इसलिए हम सब दिल ही दिल में बाबा को बहुत बहुत थैंक्स देंगे, शुक्रिया करेंगे कि बाबा आपने मुझे अपना बनाया और अपने घर में बुलाया है अपना जन्मदिन मनाने के लिए। तो कितने हम सब भाग्यवान आत्माएं हैं जो भाग्य विधाता ने हम सब की भाग्य की इतनी ऊंची तकदीर की लकीर खींच करके दी है। तो हम सब ये संकल्प ले लें कि जहाँ दृढ़ता का संकल्प है वहाँ सफलता हुई पड़ी है, जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा, जो अनुभूति करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, केवल कमाल है संकल्प की। ये संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है हम सबके पास, और इस संकल्प शक्ति को अगर हम सभी पहचान लें तो ये बहुत बड़ी कमाल हो सकती है। कोई भी कमाल का कार्य कर सकते हो, जो योगिक खेती की बात चलती है, हम अपने किसान भाई बहनों को यही कहते हैं कि क्यों इतना खर्चा कर रहे हो, फर्टिलाइजर डाल के कीटनाशक दवाइयां जहर फैला रहे हो, कितना धरती माँ की शक्ति खत्म हो रही है, खाने वाले कितने रोगी हो रहे हैं, कितनी बड़ी प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। बाबा के योगी बच्चे योग के प्रयोग कर, वनस्पति पेड़ पौधे प्रकृति आपका कहना मानेगी, आप श्रेष्ठ संकल्प रचो, शुद्ध संकल्प करके अपने संकल्पों की शक्ति पेड़ पौधों को दो, आपका कहना मानेंगे और आपकी खेती अपने आप अच्छी होगी। योग के प्रयोग करो, प्रकृति के तत्वों का आवाहन करो, ये जो पांच तत्व हैं, पांचों तत्वों को विधि पूर्वक देवता के रूप में हम सब जानते हैं, क्योंकि वो देने वाले हैं, दाता हैं, उन सभी तत्वों का आवाहन करके उन सबको प्यार से बातें करके सहयोगी बना लो, क्योंकि यही सब हम सबको सतयुग से मदद करते आए हैं। तो संकल्पों की दृढ़ता ही सफलता का आधार है। तीसरा स्लोगन है, जहाँ निश्चय है अपने आप में, बाबा में, ज्ञान की हर पॉइंट में, वहाँ विजय निश्चित है। निश्चय बुद्धि विजयंती। और चौथा स्लोगन याद रखना, जहाँ लगन है वहाँ विघ्न नहीं ठहरते। अगर विघ्न आ रहे हैं बार बार, हमारे पुरुषार्थ में कोई रुकावटें डालता है, तो उसका कारण है लगन में कुछ कमी है। लगन को अग्नि कहा जाता, और जिसकी तेज अग्नि है, लगन है, बाबा से अटूट प्यार है, वहाँ विघ्न कहाँ रह सकते हैं। कोई विघ्न कहता ये विघ्न है, ये विघ्न है, माना अभी तक भी लगन को तेज नहीं किया है, प्रज्वलित नहीं किया है, नहीं तो कौन किसको रोक सकता है। तो ये चार स्लोगन के आधार से अब बाबा को राजी करने की पांच बातें और सुना देता हूँ। एक तो बाबा को हमारी सच्चाई बहुत पसंद है, अंदर और बाहर से साफ और सच्चे हैं बाबा। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ, आपसे क्या छिपाऊं। इसलिए बाबा को सच्चाई से अपना पोता मेल देने वाले बच्चों पर बाबा राजी रहता है। दूसरा, जो एक व्रता है, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल और एक भरोसा, जो पहले संकल्प में बाबा को याद करता है, बहुत बड़ी कंडीशन है ये। इस बात को थोड़ा सा अंडरलाइन करना, सभी अंडरलाइन करना, कि अगर कोई भी बात हमारे सामने आती है और उसको हल करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए हम पहले नंबर में बाबा के बजाय किसी देहधारी की तरफ ध्यान देते हैं, वो भाई होता, वो वकील होता, वो जज होता, वो होता, तो मदद मिल जाती है। तो बाबा बहुत पक्का है यहाँ पर, वो बोला नहीं है, वो किनारा हो जाता है कि पहले उसकी मदद ले लो। इसलिए ध्यान देना कि बाबा एक वृत्ता बच्चों को पसंद करता है, जिसको पहले संकल्प में आता है कि बाबा हमें हर प्रकार से मदद करेगा, बाबा हमारा साथी है, और वो जिसको चाहे उसको निमित्त बनाए, वही कर सकता है, वही होगा तो होगा। ये संकल्प भी हमारी कमजोरी का प्रतीक है। इसलिए बाबा को चाहिए एक वृत्ता बच्चे जिनकी याद अव्यभिचारी हो, पहले नंबर में बाबा को याद करता हो। और तीसरी बात है, जिसने सब जवाबदारियां बाबा पर अर्पित कर दी। बाबा ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये कार्य व्यवहार जो हमने आपकी श्रीमत के अनुसार शुरू किए हैं, कर रहे हैं, इसकी जवाबदारी आपके ऊपर है। सच्चे दिल से अगर बाबा को समर्पित करके हम सब कर रहे हैं कोई भी कर्म, तो बाबा उसकी जवाबदारी संभाल करके कहता, तू बच्चा लाइट रहे, हल्का रहे, मैं बैठा हूँ। एक स्लोगन है ना, बाबा बैठा है, तुम चिंता मत करो। जब बाबा बैठा है, हम सबके साथ है, सर्वशक्तिमान है, हजार भुजाओं वाला बाबा हमारे साथ है, फिर जवाबदारियों की, चिंताओं के टोकरे लेकर क्यों घूम रहे हैं। इसलिए मन और बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ लेकर के न बैठें, बाबा पर अर्पित करें, और इतने विश्वास के साथ करें कि बाबा इसका अपने आप हल करेगा, मैं कोई भी प्रकार की अपने पर जवाबदारी न लें। वहाँ पर हम छोटे बन जाएं, उसको कहता है बाबा अलौकिक भाषा में, वहाँ पर हम बेगर बन जाएं, बाबा राजी हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। और चौथी बात, जो कुछ बाबा ने दिया है ये बाबा की अमानत है। ट्रस्टी बन करके रहना, ईमानदार बन करके रहना, कोई भी, चाहे वो धन मिला है, चाहे तन की शक्ति है, चाहे मन की शक्ति है, कोई भी शक्ति ये बाबा की देन है और मैं उसका ट्रस्टी हूँ, संभालने वाला हूँ, और विधि पूर्वक संभालूं, जरा भी अमानत में ख्यानत न हो। एक दिखावा नहीं करना है, कई लोग करते हैं लेकिन दिखाते बहुत हैं। सबको पता चलना चाहिए। और एक होते हैं बहुत गुप्त रीति से बाबा के कार्य को बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसे यज्ञ नहीं चलता, दिखाने वाले तो दिखाते रहते मैं इतना मदद करता हूँ, लेकिन बाबा के गुप्त योगी बच्चे, गुप्त सहयोगी बच्चे बाबा के यज्ञ को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। कभी दिखावा नहीं करते, कभी सीट नहीं मांगते, कभी मानसान की इच्छा नहीं रखते। बाबा उन पर बहुत राजी रहता है, प्रसन्न रहता है कि कितना गुप्त पुरुषार्थी बच्चा है, हर इच्छा उसकी पूरी कर देता है। उसके लिए बाबा बंध जाता है कि बहुत सच्चा है, ट्रस्टी है, ईमानदार है। और पांचवी बात, बहुत निर्मल, सरल, स्वच्छ, शुद्ध स्वभाव वाला है, क्योंकि स्वच्छता बाबा को बहुत पसंद है अंदर और बाहर की। जरा भी मन के अंदर अस्वच्छता अर्थात किसी भी की कमी और कमजोरियां, किसी की भी नेगेटिविटी इस मन के अंदर न हो, गंदगी मन के अंदर न हो, ये मन निर्मल हो। बाबा को बहुत निर्मल मन वाले बच्चे प्यारे लगते हैं, बाबा उन पर राजी रहता है। हम सब भगवान को, भोलानाथ को राजी करेंगे इन विधियों से। ऐसा राजी हो जाएगा जो कोई भी प्रकार का बड़े से बड़ा पेपर, क्योंकि 63 जन्मों में देह विमान के कारण आत्मा ने कितने भी कर्म, कितने पाप कर्म किए होंगे, और वो सब पाप कर्मों की सजा इस योग के द्वारा सहज चुक तो नहीं हो सकती। उसके लिए कई प्रकार की कड़ी भोगनाएं हैं, लेकिन जिस पर भगवान राजी है उसके लिए वो भोगनाएं सूली से कांटा बन जाती हैं। बहुत सहज रीति से उस बात को पार कर लेता है, जैसे कुछ भी नहीं है। उसके लिए पहाड़ भी एक राई नहीं लेकिन रुई समान अनुभव होता है। बड़े कितनी भी बाहर जैसी बातें क्यों ना आ जाएं, कोई हिसाब किताब, कोई संस्कार, कोई भी प्रकार की रुकावट, अगर भगवान राजी है तो कहते हैं जहां मियां बीवी राजी वहां क्या करेगा काजी। बाबा जिसके ऊपर राजी है, स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान हमारे ऊपर राजी है, प्रसन्न है, तो माया काजी क्या कर सकती है, या लोग क्या कर सकते हैं। कितने भी विघ्न डालें, कितनी भी रुकावटें डालें, लेकिन वो रुक नहीं सकता। तो जरूर इस निश्चय से भगवान को अगर हमने राजी किया है तो चेक करना किसी भी प्रकार की उलझन तो नहीं है, मन कहीं उलझा हुआ तो नहीं है, मेहनत और युद्ध का अनुभव तो नहीं होता। अगर मेहनत और युद्ध का अनुभव हो रहा है, कई प्रकार की उलझनों में हम उलझे हुए हैं तेरे मेरे की, तो क्या भगवान मेरे ऊपर राजी है। चिंताएं लगी हुई हैं, जब बाबा हमारी चिंता हरने वाला है तो हमारे को किस प्रकार की चिंता है। मेरी बेगमपुर की स्थिति है, आत्मा सुख शांति आनंद शक्ति सब गुणों से संपन्न और भरपूर अनुभव करती है, ये चेकिंग है। यदि सचमुच उसको मैंने राजी किया है, भोलानाथ प्रसन्न है, दाता विधाता वरदाता भाग्य विधाता वो मेरे पर प्रसन्न है, तो क्या कोई भी प्रकार की चिंता, कोई भी प्रकार का गम, कोई भी प्रकार का टेंशन हो सकता है। अगर हो रहा है, माना अभी तक कोई कमी है जो उसको मैंने राजी नहीं किया। चेक करो, जिस पर स्वयं भगवान राजी हो उसके लिए सब रास्ते साफ हो जाते हैं। कोई भी बात हमारे जीवन में, हमारी डिक्शनरी के अंदर वो नाम नहीं है कि ये बात असंभव है। सब कुछ संभव है, जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें वो हो सकता है, जो चाहें वो बन सकते हैं। लेकिन इतना बहुत अंदर का विश्वास चाहिए, फेथ चाहिए, फेथ की विजय है। इसलिए ऐसे निश्चय बुद्धि बन करके, ऐसे दृढ़ता के संकल्प के साथ हम सब बाबा को साथी बना करके, और जो कुछ बाबा कह रहे हैं, बाबा की मूल श्रीमत को सामने रखो। जब से बाबा के बच्चे हम बने हैं, दो तीन बातों में अलबेलापन ना आए। तीन ब्राह्मणों के महाशत्रु हैं, वैसे तो कहां महाशत्रु बाबा बोलता है, लेकिन तीन शत्रु अलग बता रहा हूं। एक आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, जो योग और क्लास में ही आता है, बाहर कम आता है अंदर ज्यादा आता है। अमृत वेले बैठेंगे, योग में बैठेंगे, कई बार बहुत अच्छे वातावरण में बैठेंगे, और वातावरण इतना अच्छा है, शक्तिशाली योग चल रहा है, उसके बीच में भी नींद की लहरें आती हैं। पता नहीं कौन सा हिसाब किताब है आत्मा का, कौन सा बोझ है जो आंख खुलने नहीं देता, चेक करना। आलस्य हम सबका बड़ा शत्रु है। बाबा की श्रीमत का पालन करो कि यथार्थ योगी बनना है, सहज योगी बनना है, मेहनत वाला नहीं। आलस उसके बीच में कहां से आ गया। और दूसरा अलबेलापन, अलबेलापन माना दूसरों को देख करके चलना, या बाबा की कई ऐसी बातें हैं जिनको डल्लब का तकिया बना देना। क्या बातें हैं बाबा की ऐसी, बच्चे पास तो आठ ही होंगे, ड्रामा तो बना बनाया है। कई ऐसी बातें बाबा की मुरली की नोट करके ब्राह्मण आत्माएं अलबेली हो जाती हैं। जब आठ ही पास होंगे तो मैं कहां से पास हो जाऊंगा, मुझे क्या करना है। इसलिए ध्यान रखो, ये रेस है, कोई भी नंबर आए उसकी बात नहीं है, लेकिन मुझे रेस में नंबर वन लेना है, मुझे आगे आना है, रेस में पीछे नहीं हटना। तो अलबेला बाबा की मुरलियों की कोई पॉइंट से नहीं बन जाना, या कोई को देख करके ये महारथी ये भी ऐसे करता है, ये भी हार खा लिया, इसने भी तो इतना सब ज्ञान सुनाता है, क्लास कराता है, ऐसा करता, फिर भी ऐसे इसके साथ, उसको देख करके अलबेले हो जाते हैं कई लोग। और तीसरा है बहानेबाजी, हर बात में बहाना, भाई क्या करें, बहुत काम है, मुरली के सुन समय बहाने, हम तो व्हाट्सएप पर, हम तो मोबाइल पर मुरली सुन लेते हैं, क्लास में जाने में ये काम है, ये काम है, कई काम निकल आते हैं। आजकल ब्राह्मणों को साइंस के साधनों ने भी बहाने करना सिखा दिया है। इसलिए ध्यान रखो, बाबा की ये श्रीमत, ये आज्ञाएं सिर माथे, बाबा राजी रहेगा। अमृत वेला कभी मिस न हो, और मुरली क्लास समय पर और क्लास के बीच में हाजिरी दे करके उस वातावरण का, उस वाइब्रेशन का लाभ लेना, ये बहुत बड़ी बाबा की आज्ञा है। और उस आज्ञा को पालन करने वाली आत्माएं, जो आज्ञाकारी बाबा के बच्चे हैं, वो तो बाबा उन पर प्रसन्न है ही। तो अमृत वेला है, अमृत मुरली क्लास है, अन्न की परहेज है, संग की परहेज है, जो बाबा ने हमें बताई है, अगर हम उनको दृढ़ता पूर्वक पालन करके चलते हैं, नियम और मर्यादाओं में पक्के होकर के चलते हैं, तो बाबा तो फिदा हो जाता है, खुश हो जाता है, वाह मेरा बच्चा वाह। क्योंकि बाबा को कोई कहे ना, मैं बाबा क्या करूं, मेरे आगे ये है ये है, तो बाबा उसको माफ भी करता, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर बाबा उस समय मना करे और फिर कर ले तो उस पर डबल पाप चढ़ जाएगा, इसलिए बाबा किसी को मना नहीं करेगा। जैसे बाबा कई बार कहता ना, कोई कुमार आके पूछे, बाबा मैं क्या करूं, मुझे बहुत बंधन है, मुझे तो शादी के लिए परेशान करते हैं, तो बाबा समझ जाता है इसकी दिल है, इसलिए बाबा कहेगा भले कर लो ना, किसने मना किया है। अगर तुम महावीर हो, पक्के हो, पता है कि अंतिम जन्म है, मुझे निर्बंधन रहना है, मैं मुझे महावीर बन करके, पवन पुत्र बन करके सेवा करनी है, तो कौन आपको बांध सकता है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है, जहाँ हिम्मत है वहाँ मदद है। बाबा अपने आप सब रास्ते खोल देगा, लेकिन कमजोर संकल्प अगर कर रहे हो तो बाबा क्या करेगा। कोई कहेगा मुझे ये खाना ही पड़ता है, इनके हाथ का खाना ही पड़ता है, बाबा कह रहे बच्चे झगड़ा थोड़ी करना, भले खाओ, क्यों मना करेगा। लेकिन अगर आप पक्के हो आपको रास्ता मिल जाएगा, कोई निकल आएगा आपको बना के खिलाने वाला। लेकिन पक्का बाबा देखता है इसका सच्चा दिल कहाँ तक है। अगर दिल सच्ची है तो सब रास्ते निकल आते हैं, कोई न कोई निमित्त बन जाते हैं उनको मदद करने के लिए। इसलिए भगवान को राजी करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, अगर वो राजी हो जाए तो और क्या चाहिए। तो हम सब बहुत सच्चे दिल से सच्चे मन से बाबा को अपने आप को अर्पित करके, बाबा मैं आपका हूँ, बस आप मेरे हो मैं आपका हूँ, तो देखो आपकी रक्षा कैसे करता है। सब प्रकार से रक्षा करेगा, सब प्रकार से मदद करेगा, सब प्रकार से साथ निभाएगा, लेकिन सच्चाई उसको चाहिए बस। ऐसे नहीं कहो कुछ करो कुछ, ऊपर से कहो मेरा तो बाबा है के सिवाय और कौन है, और अंदर से 10 प्रकार के रिश्ते बना करके बैठे हैं। तो बाबा देखता तो अंदर से सब जानता है ना, बच्चों की दिल कैसी है। इसलिए भगवान राजी हो जाए, मैं समझता हूँ कोई तमन्ना इस जिंदगी में नहीं रहेगी। सब तमन्नाएं, सब इच्छाएं, सब प्राप्तियां बाबा अपने आप करा देगा। तो ध्यान रखना कि बाबा कैसे राजी होता है। है तो भोलानाथ बिगड़ी को बनाने वाला, शिव भोलानाथ को कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाला। जब कलयुग में सबकी बिगड़ जाती, सब आत्माएं पतित बन जाती, सब आत्माएं तमो प्रधान बन जाती, सब आत्माएं भगवान को भूल जाती, शायद भोलानाथ इसलिए भी उसको कहा है कि जब उसका सब अपकार कहने लगते तब आकर के भी अपकारियों पर उपकार करता है। इसलिए भोलानाथ है जो पतित दुनिया में आकर के पतितों के पास आकर के उनको पावन बनाता है। जब बिल्कुल बिगड़ जाती कोई उसको नहीं जानता तब आकर के बिगड़ी को बनाता है। तो हम सबका भोलानाथ बाबा सच्चा भोलानाथ, उसको हम इतने दिल से इतने प्यार से पहचान करके उसके साथ सब संबंध जोड़ करके हम कहते हैं। किसी ने कल मुझे कहा कि मैंने बाबा को अपना बेटा बनाया। माता कहानी मुझे सुना रही थी कि एक बार बहुत बड़ा घर था और कोई काम से कोई लोग आए घर में और मैं अकेली थी। तो उन्होंने पूछा माताजी आप अकेली रहती हो? तो माताजी अभी सच बोलें तो फंस जाएं, क्योंकि अकेली बोल देगी तो कहेंगे कभी भी पता नहीं कोई कुछ कर लेगा। तो नहीं नहीं मेरा बेटे का ये घर है, वो बाहर गया है, उसका घर है, मैं तो ऐसे ही मदद के लिए रही हूँ। ऐसे बोल करके बाहर आई तो कहती है मैंने झूठ तो नहीं बोला। फिर उसको याद आया बाबा कहता मैं बेटा हूँ ना, ये बेटे का घर है ना, बाबा तो बेटा है ना। तो उसको इतना निश्चय हो गया कि मैंने सच बोला झूठ नहीं बोला, कि बाबा का घर है। और जब उसने बाबा को बेटा बनाया और बाबा को घर समर्पित कर दिया तो रक्षा कौन करेगा? बाबा करेगा ना। इसलिए कोई भी संबंध से अगर हम बाबा को कोई भी संबंध से याद करते हैं तो उसके पीछे उस संबंध के अंदर कुछ त्याग, कुछ बलिदान, कुछ कुर्बानियां हैं। ऐसे संबंध नहीं है। अगर हम कहते हैं मेरा सच्चा वो मासुक है तो क्या मैं उसकी सच्ची सजनी, वफादार सजनी, कोई में आंख न जाए ऐसी हूं? अगर वो मेरा शिक्षक है तो उसकी एक एक शिक्षाओं से मेरा इतना जिगरी प्यार है कि एक भी महावाक्य मिस न हो। बाबा मुझे क्या पढ़ाना चाहता है, क्या बनाना चाहता है, वो मैं पूरा ध्यान दूं। तो हर संबंध से जो संबंध बाबा के साथ हैं, हम सब संबंध एक बाबा के साथ जोड़ करके उन संबंधों का स्नेह अनुभव करें, और उस स्नेह की निशानी हम कुछ न कुछ गुणों को, वैल्यूज को उन संबंधों के साथ जोड़ दें। कहीं सहन करना पड़ता है, कहीं समाना पड़ता है, कहीं निभाना पड़ता है, बहुत सारे गुण इन संबंधों के पीछे समाये हुए हैं। तो हम सब बाबा को सब संबंधों से अपना बना करके, बाबा कहता जहाँ स्नेह है, जहाँ संबंध है, वहीं सब प्राप्तियां हैं। अगर बाबा से जिगरी स्नेह है सच्चा और उसके साथ अटूट संबंध है मेरा, तो सब प्राप्तियां अपने आप हो रही हैं। कोई भी कामना, कोई भी इच्छा, कोई भी अप्राप्ति इस जीवन में अनुभव ही नहीं होती। तो आप सभी बाबा के बच्चे इस ब्राह्मण जीवन के अंदर एक एक ये अनुभव करके यहाँ से जाना कि सचमुच इस ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नामो निशान नहीं है। मैं आत्मा तृप्त हूँ, भरपूर हूँ, संतुष्ट मणि हूँ। असंतुष्टता का नाम निशान नहीं है, लेकिन सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि दूसरों से भेंट नहीं करना। जहां भेंट शुरू होती वहां अपनी खुशी गायब हो जाती है। जिसके पास इतना है मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जितना है, मैंने जितना पुण्य किया, जो आज बाबा ने कहा है तीन खाते अपने चेक करना, तीनों खातों से मैं आत्मा कहां तक संपन्न बनी हूं। याद है आज की मुरली? तीन खाते, जिसको याद है हाथ उठाओ, बहुत कम है। मुरली पर थोड़ा मनन चिंतन करने का अभ्यास करो, सिर्फ सुनना नहीं। मुरली ही हमारे जीवन का खजाना है, श्वास है। उस पर मनन चिंतन चलता रहे, बाबा कहता कोई भी व्यर्थ आ ही नहीं सकता। व्यर्थ आता है क्योंकि आपका मनन चिंतन बाबा की मुरलियों पर नहीं है। बाबा ने आज बहुत अच्छी तरह से कहा, बच्चे एक तो ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब प्राप्तियां प्रारब्ध के रूप में अनुभव होने लगे। ये खजाना हमारा हो कि हमारा पुरुषार्थ प्रारब्ध बनाता जाए, और दूसरा इतना श्रेष्ठ कर्म हो, इतना सुख दें, संतुष्ट रहें, संतुष्ट करें, जो सबकी दुआएं मिलती रहें, और तीसरा ऐसे कर्म हो जो पुण्य की पूंजी जमा हो जाए। पुण्य उसको मिलते हैं जो करने के बाद कहीं वर्णन चिंतन नहीं करता, दिखावा नहीं करता। तो एक पुण्य की पूंजी है, एक दुआओं का स्टॉक है, और एक पुरुषार्थ से प्रारब्ध है। तो इन तीनों खातों में मैं आत्मा कहाँ तक संपन्न हूँ। मेरी प्रारब्ध बनाने का आधार पुरुषार्थ है। अगर अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ है तो प्रारब्ध अच्छी बनी हुई ही है। अगर मैं आत्मा हर आत्मा को संतुष्ट कर रही हूँ, सुख दे रही हूँ, प्रसन्न कर रही हूँ, तो दुआओं का स्टॉक जमा ही है। और ये बहुत गुप्त रीति से, यहाँ तक गुप्त बात आती है कि इस हाथ से करें और इस हाथ को पता न चले। माना कहीं भी वर्णन न हो, कहीं भी दिखावा न हो, वो पुण्य की पूंजी जमा हो जाती है। ऐसे तीनों खाते जमा करने का ये भाग्य है, और जिस ब्राह्मण आत्मा के पास ये तीनों खाते फुल हैं, उसका चेहरा कैसा होगा, उसकी चलन कैसी होगी, उसके जीवन की रियलिटी कैसी होगी, उसकी कहीं पर भी आंख नहीं डूबती, किसी में भी नहीं डूबती। वो कितना भी धनवान हो, कितना भी रूपवान हो, कितना भी संपत्तिवान हो, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो बाबा ने सब कुछ दे दिया। मेरे जीवन में किसी शक्ति की, किसी गुण की, किसी खजाने की स्थूल सूक्ष्म में अप्राप्ति है ही नहीं। अब समय है कि हम सब ऐसा अपना जीवन बना करके अपने जीवन से, बाबा कहता बच्चे वाणी से तो बहुत सेवाएं कर ली, मैं प्रत्यक्ष नहीं हुआ, लेकिन अब प्रत्यक्षता के समय में आप बच्चों की जीवन चलन और चेहरा प्राप्ति संपन्न अनुभव हो तो बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो हम सब बाबा के बच्चे इस महाशिवरात्रि पर ये संकल्प करें कि बाबा हम अपने चलन से, अपने चेहरे से, अपने प्राप्ति संपन्न जीवन से, एक आपकी अभिविचारी याद से, निर्मल और मधुर वाणी से आपको प्रत्यक्ष करके ही दिखाएंगे। तो ये 2015 वर्ष क्या होगा, बाबा को हम प्रत्यक्ष करके इस सृष्टि का महापरिवर्तन कर सकते हैं। तो जहां जब तक प्रत्यक्षता नहीं है तब तक परिवर्तन नहीं है। इसलिए सब लोग निमित्त बन करके संकल्प करना कि बाबा हम आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। तो बाबा प्रत्यक्ष हो और इस कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन हो और हमारी नई दुनिया आए। तो ऐसे शिव जयंती की, आने वाली स्वर्णिम दुनिया की, आप सबको बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
Thank you.